करते थे आत्मा आज डॉक्टर सैनी डॉक्टर पटेल वरन ने आपके समक्ष निकल का एक मंत्र दिया है एकदम सत विपरा बहुरा बदन। इसी मंत्र पर आपके सामने विचार विमर्श करें। अगर आप अपना जीवन देखते हैं तो आपके माता पिता उनके माता पिता उनके माता पिता आज विज्ञान ने मान लिया है कि आपका अस्तित्व बताता है कि आपके जो माता पिता थे उनके भी थे उनके भी थे उनके भी थे उनके भी। तो विज्ञान कहाँ तक पहुँचता है हम चले पता। यहाँ समक्ष कठित समाज है अगर आइंस्टाइन ने भी कहा कि अंतरिक्ष में से हर चीज प्रकट होती है और वापस जाती है। हमारा आपका जीवन जब हम कहते हैं कि जन्म हुआ तो जन्म का अर्थ ही होता है प्रकट होना। लेकिन ऋषियों ने विशेष शब्द दिया जन्म और प्रकट। संस्कृत के जो ज्ञाता जनित प्रादुर्भावे जो आप प्रकट है उसका प्रकट होना ही जन्म है। लेकिन ऋषियों ने बाद में विशेष विचार हमें आपको दिया। हम और आप नर या नारी के स्वरूप में जो आए उनको प्रकट था इसलिए अवतारों को भी प्रकट रूप माने। लेकिन कीड़ी है हाथी है शेर है जानवर है पशु है पंखे ये भी ना प्रकट से प्रकट हुए लेकिन वो जन्म मान गया। पशु पंचों के लिए जन्म शब्द का उपयोग किया गया हमारे और आपके लिए प्रकट शब्द फिर आया। हम आप प्रकट होकर से जब विशेष सफलता प्राप्त करते हैं काम करते हैं तो उन्हें विशेष वेद प्रकट को परमात्मा का नाम कहते हैं। लेकिन पशु पंक्ति जिस तरह आते हैं उसी तरह से चले जाते हैं उसको जन्म का अर्थात जन्म का अर्थ है प्रकट होना वापस जाना लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होना। प्रगत का स्वरूप है प्रगत होना काम भी करना अपने स्वरूप को जितना ऊंचा उठाना चाहे उठा सकते हैं इसकी स्वतंत्रता। तो प्रगत में स्वतंत्रता है कर्म की और जन्म में बंधन। जैसे एक शेर की बात है शेर का आचरण जीवन वही का वही रहेगा जन्म से लेकर मरण। बकरी का भी है
और आप अपना जीवन में आपका जन्म कैसे हुआ लेकिन आप अपने जीवन को जितना ऊंचा उठाना चाहे उठा सकते हैं
जितनी शक्ति आप प्रकट करना चाहे कर सकते हैं और अधोगति में भी जितना जाना चाहे जा सकते हैं। हम और आप नर या नारी के रूप में आगे भी प्रगति कर सकते हैं आसमान तक पहुंच सकते हैं। ये प्रगति हमारी आसमान तक एक साधारण आदमी से परमात्मा तक हमारी यात्रा हो सकती है और नीचे गिरना चाहें अधोगति में तो अधोगति में गति है लेकिन नीचे जाएंगे। नर या नारी के रूप में प्रकट होकर हम जानवर से भी बदतर बन सकते हैं सांप से भी जिसे अधोगति दोनों में गति है।
ऊर्ध गति और अधोगति। ऊर्ध गति अपनी शक्ति को एक बाद एक प्रगति में प्रकट करना, चाहे हमारा जन्म कहीं भी हुआ, झोपड़ी में हुआ कि महल में हुआ, हम बड़े घर में जन्मे या गरीब घर में जन्मे, लेकिन हम आसमान तक अपने जीवन में जितना रूपांतर करना चाहें कर सकते हैं, जिस शक्ति को प्रकट करना चाहें कर सकते हैं। अधोगति का जो स्वरूप है कि सारी जिंदगी जानवर जानवर रहेगा, शेर शेर रहेगा, लेकिन जब हम जन्मे नर या नारी के रूप में तो हमारे अंदर दोनों गुण थे, देवत्व का और पशुत्व का, एनिमल पैशन और डिवाइन पैशन। हम स्वतंत्र हैं कि हम अपने अंदर देवत्व को भी जगा सकते हैं और पशुता को भी जगा सकते हैं। हमें पशु होना नहीं है, हमें देवता नहीं होना है, लेकिन दोनों गुण हमारे आपके अंदर मौजूद हैं। साधना के द्वारा देवत्व प्रकट करना है। एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, हमारी साधना से देवत्व बनता नहीं, हमारी साधना से देवता नहीं बनते, लेकिन अंदर जो देवता का गुण है, धर्म है, व्यवहार है, सत्य है, प्रेम है, भाव है, इसको बनाना नहीं है, ये है, इसको प्रकट करना है। जमीन के अंदर पानी है, जब आप एक व्यवस्था से अंदर से पानी निकालने की व्यवस्था अपनाते हैं तो व्यवस्था से अंदर पानी बनता नहीं, लेकिन जो अंदर पानी है आपकी व्यवस्था से बाहर आता है। इस तरह हमारे अंदर जो देवत्व है, डिविनिटी, किसी साधना से देवत्व बनता नहीं बल्कि प्रकट होता है। आपके सामने मिट्टी है, मिट्टी एक सत है, एक अस्तित्व है, जो मंत्र लिया गया, एकम सत विप्रा बहुधा बदंते, आज जो दिया डॉक्टर साहब ने इंद्रवदन में, मिट्टी है, मिट्टी में नहीं बनाता, लेकिन मिट्टी में से जो रूप प्रकट करना चाहूं वो हम कर सकते हैं। मेरे हाथ में जो मिट्टी है उसमें मैं शेर भी बना सकता हूँ, घोड़ा भी बना सकता हूँ, और आपके हाथ में जो मिट्टी है वही आप अपने विचार से, संकल्प से उसमें राम का भी स्वरूप दे सकते हैं, कृष्ण का भी दे सकते हैं। यह तो एक देवत्व की बात हुई, मिट्टी वही है, लेकिन किसी के विचार में अगर इतनी शुद्धता नहीं है तो जिस क्षण आप मिट्टी में से राम बना रहे हैं, कोई रावण भी बना सकता है, पूरी की पूरी मिट्टी वही है। जिस समय आप कृष्ण का स्वरूप मिट्टी में से बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी समय कोई दूसरा भी प्रयास कर सकता है, कंस का भी कर सकता है। आपके हाथ में जो मिट्टी है उस मिट्टी से आप राम को प्रकट करना चाहते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में मिट्टी है तो अपने विचारों से उस मिट्टी में से रावण भी प्रकट कर सकता है। इसलिए विज्ञान भी मान गया है, हम मिट्टी नहीं बना सकते, हम पानी नहीं बना सकते, हम अग्नि नहीं बना सकते, हम वायु नहीं बना सकते, हम आकाश नहीं बना सकते। यहाँ पर हम आप जो बैठे हैं और पूरी सृष्टि के विकास क्रम को देखें तो हमें अपनी गर्भावस्था से पता लग जाता है, आप और हम पुत्र या पुत्री एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे धर्म नाम दिया गया और विज्ञान इसे मानता है कि जहाँ क्रिएशन है वहाँ फ्रिक्शन है, घर्षण है। मैं एक संत हूँ, मेरी मर्यादा है, इसको समझिएगा। हमारे पिता के अंदर एक प्रक्रिया से जो धर्म का रूप दिया गया, घर्षण हुआ तो पिता के अंदर विस्फोट पैदा हुआ और विस्फोट को मेरी माँ ने धारण किया। पहले लिक्विड है, फिर इसके बाद कुदरत अपना काम करेगी, लार्वा है, मेढक है, छठे महीने में वानर बनते हैं, सातवें वाकट के नर और नारी बनते हैं। यहाँ कोई आपका संकल्प काम नहीं करता, केवल विस्फोट की जिम्मेदारी हमारे माता पिता की है, धारण करने की जिम्मेदारी है। स्वस्थ होना जरूरी है, समय उचित होना जरूरी है, प्रक्रिया का ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन उसके बाद चाहे नेचर माने, परमात्मा माने, प्रकृति माने, कुदरत माने, लेकिन अपने आप एक लिक्विड से क्रम से लार्वा मेढक होते हुए छठे महीने वानर बनेगा, सातवें महीने में खुद प्रकृति आपको नर या नारी के रूप में अंदर प्रकट करेंगे। फिर नौ महीने के बाद हम बाहर आते हैं पुत्र या पुत्री के रूप में। फिर एक एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, और विज्ञान कहता है कि आफ्टर द बर्थ व्हेन वी मीट द एनवायरनमेंट यू आर मल्टीप्लाइड। जन्म से हम सब हिंदू ही है, हिंदू का अर्थ है सनातन, सनातन का अर्थ है बिना कोई परिवर्तन लाए ईश्वर को पूर्ण रूपेण स्वीकार करना। तो जन्म से हर पुत्र या पुत्री जिसे सनातन कहा गया, हिंदुत्व कहा गया, वो है। और फिर जो संप्रदाय की बात आती है वो धर्म की बात नहीं है, संप्रदाय। संप्रदाय जा विचार कीजिए, एक विशेष है। हम ऐसी प्रक्रिया करें, ऐसे करें तो हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि ईसाई हैं, लेकिन सनातन धर्म से जन्म से आप पर्यावरण में मल्टीप्लाई हुए। जैसे मैं जब जन्म लिया तो मेरे परिवार का एनवायरनमेंट पर्यावरण काम किया। मेरे माता पिता ने सिखाया कि गाय की पूजा करो, उसी समय कोई और पैदा हुआ उन्हें सिखाया जाता है कि ऐसा करो ऐसा करो। तो जिसे आप संस्कार कहते हैं, ये संस्कार जन्म के बाद पर्यावरण से पड़ता है, और पर्यावरण का संबंध सुनने और देखने से है। इसलिए एक गाय की पूजा करेगा एक नहीं करेगा, एक घर में ही शादी करेगा एक नहीं करेगा। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, लेकिन इसका संबंध धर्म से नहीं, धर्म तो सत्य और प्रेम है। जिसके पीछे किसी व्यक्ति का प्रचार प्रसार नहीं है बल्कि है, अब ये धर्म और प्रेम की बात ले लीजिए। हम कहीं भी जन्मे, लेकिन कोई भी धर्म का व्यक्ति वास्तव में है संप्रदाय, लेकिन फिर भी आमतौर से धर्म के नाम से जानते हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जन्मा, पुत्र या पुत्री के रूप में, लेकिन सब सत्य बोलते हैं। जन्म से आप सत्य बोलते हैं, और सत्य बोलना आपको किसी ने सिखाया नहीं। जन्म से कुत्ता अपने मालिक का वफादार होता है, कोई सिखाता नहीं। बिल्ली को कितना सिखाइए फिर भी आपको वफादार नहीं रहेगा। इसी तरह से हम और आप, जैसे जन्म से कुत्ता वफादार है, उसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती। जन्म से बिल्ली आपके प्रति वफादार नहीं है। वैज्ञानिकों ने निरीक्षण किया कि कुत्ते का बच्चा जब दूध पीता है, आपके द्वारा जब कटोरी में रखा जाता है, आप देखें, आप ऑब्जर्व करें, तो कुत्ते का बच्चा आपके द्वारा कटोरी में रखने के बाद जब दूध पीता है तो आँख खोल करके पीता है। बिल्ली के बच्चे के सामने दूध रखिए तो आँख बंद करके पीता है। तो विज्ञान में पहला जो परीक्षण है ऑब्जर्वेशन। वैज्ञानिकों ने इसका ऑब्जर्वेशन किया, देखा कि कुत्ते का बच्चा आँख खोल करके दूध पीता है, इसलिए आपका वफादार है। बिल्ली का बच्चा आपका ही दूध पीता है, लेकिन आंख बंद होती है, इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने कहा बिल्ली का बच्चा आपको बता रहा है हम आपका दूध पिएंगे, लेकिन हमसे वफादारी की बात मत रखना। ये मनोवैज्ञानिकों की बात है, और बात ठीक भी है। कुत्ते के बच्चे को दूध पिलाओगे तो आँख खोल के पिएगा, आपको देख कर पिएगा। बिल्ली के बच्चे को पिलाओगे तो आँख बंद करके पी के बैठा रहेगा, चला जाएगा। ये मनोवैज्ञानिकों की बात है या कुदरत की बात है। तो जहाँ विचार कीजिए, जब हम आप गर्भ में आए तो जो हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन है, मैंने कहा दोनों गुण हमारे में, और आपका जो विज्ञान है वो कहता है हमारे अंदर पशु का भी गुण है, देवत्व का भी गुण है। 90% हमारे आप में पशु का है। लार्वा की बात किया, मेढक की बात किया, वानर की बात किया। इसके बाद जब प्रकट हुए, हमारा आपका जन्म हुआ, तो पर्यावरण काम किया। अब विज्ञान आ गया कि कैसे हम समझें कि हमारे लिए क्या पुण्य है क्या पाप है, उसके लिए यही कहा गया। जन्म के बाद जो आपको संस्कार मिलता है, जिसे विज्ञान ने कहा सेकंड नेचर, कर्म करते समय आप सुनते हैं, सुनना भी कर्म है, देखना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है, हाथ का हलन चलन भी कर्म है, उठना बैठना सोना जागना खाना पीना चलना सब कर्म है। रामायण में से मनोवैज्ञानिकों ने लिया, जब लंकेश पूछता है तो स्वयं जोशी भी है, शंकर से पूछता है कि मेरा ज्योतिष कहता था कि विनाश नहीं होगा, फिर भी हे प्रभु मेरा विनाश क्यों हुआ। वहां पर शंकर ने जो उत्तर दिया, मनोवैज्ञानिक है, आज के वैज्ञानिक कहते सच झूठ की बात तुम जानो, लेकिन जो सत्य है मनोविज्ञान की कसौटी पर वो सत्य है। इसलिए शंकर ने कहा कि नहीं कहा, इस झंझट में ना पड़ो, लेकिन जो शंकर ने कहा है उसे अपने अंदर विचारने की बात करो। जब लंकेश पूछता है तो शंकर कहते हैं, हे लंकेश, जब तू चलता था तो धरती कांपती थी, हाँ तो जब तू मन में छल कपट करके सीता की ओर जा रहा था तो उस समय बिल्ली की तरह क्यों कांप रहा था? अर्थात तेरा संस्कार तेरे अंदर भय पैदा किया। पढ़ने के बाद वैज्ञानिकों ने इसी पर हमें आपको बताया। वैज्ञानिक कहते हम आपसे नहीं पूछेंगे कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि ईसाई हैं कि यहूदी हैं, लेकिन जन्म के बाद जो संस्कार मिला है सेकंड नेचर, अगर आपके मन में भय पैदा हो गया, जिसके आप साक्षी हैं, मैं नहीं, हम अपने मन के अपने विचार के साक्षी हैं, मेरे मन में अगर भय पैदा हो गया तो मैं अपने संस्कार के विरुद्ध जाता हूँ। मुझे किसी मुसलमान से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं। जब संस्कार की बात आई तो मैं हिंदू हूँ। मुसलमान का व्यवहार देखें, वो घर में ही शादी लग्न कर लेते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते, इसलिए हमें मुसलमान की नकल नहीं करनी है। क्योंकि विज्ञान भी कहता है जो तुम्हारा संस्कार है उसी में जीना सीखो, उसी को अपनाओ। जब तुम दूसरे की नकल करोगे, इमिटेशन इज डेथ, दूसरे की नकल करते ही तुम्हारी मौत हो जाती, तुम खत्म हो जाते। इसलिए हम हिंदुओं को सत्य और प्रेम का आदर करते हुए, मुसलमानों को भी सत्य और प्रेम का आदर करते हुए, ईसाइयों को भी, लेकिन जो व्यवहारिक है वो आप अपनी मर्यादा रखें, हमारी नकल न करें, ना मैं आपकी नकल करूँ। सत्य प्रेम की नकल नहीं है, सनातन करती है। जो आप जन्म से लेकर आए बिना किसी के सिखाए स्वीकार किया वही सनातन है। हर धर्म वाला सत्य और प्रेम को स्वीकार करता है, वो नहीं कह सकता कि सत्य प्रेम मुझे कहीं स्कूल में जाकर सीखना पड़ा कि पढ़ना पड़ा। लेकिन झूठ बोलना, कपट करना, छल कपट, ये तो बाद में बड़े होने पर लोगों ने सिखाया। बाकी आप बचपन से सत्य और प्रेम के पक्ष में, तो हमारे आपके संस्कार को देखना है। जिस कर्म को करते समय भय पैदा हो जाए वो कभी मत करना। मुसलमान क्या करता है, ईसाई क्या करता है, यहूदी करता, वो जाने उनकी मैया ही पूछे यादें थे, उनकी अपनी मर्यादा है। अब हमारी अपनी बात ले लीजिए, कहीं पर ऐसी अंधश्रद्धा की बात नहीं है हिंदू धर्म। आपके घर मैं चोरी करने आया, रिवॉल्वर से आपने मुझे मार दिया तो धर्म है, क्योंकि आपने परिवार को बचाया। लेकिन रास्ते चलते आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन आपने रिवॉल्वर से किसी को मारा तो अधर्म है। मेरा हाथ कोई डॉक्टर या कोई व्यक्ति काट दे तो अधर्म है, लेकिन मेरे हाथ में कैंसर है, मुझे पूरे शरीर को बचाने के लिए हाथ या पग काटना पड़ा तो धर्म है। यहाँ पर कोई शराब पीकर आया, हमारी शिष्या पुत्री के साथ अघटित व्यवहार करने कोशिश किया, अगर मैं उसे मार डालूं तो धर्म है, लेकिन उस पर इल्जाम लगाकर, आरोप लगाकर, बेकार का प्रमाण इकट्ठा करके मारूं जानबूझ करके तो अधर्म है। आप मिलिट्री में हैं, हमारे देश पर कोई आक्रमण करे तो मारिए तो परमवीर चक्र मिलेगा, लेकिन वही मिलिट्री का ऑफिसर गांव में आके किसी को मारेगा तो अधर्म होगा। इसलिए सेकंड नेचर में आज मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं, आप अपने को बचा रहे हैं, अपने परिवार को, अपने देश को, अपने धर्म को। गीता का भी आधार यही है। तू अर्जुन कहता है कि मेरे मामा हैं शकुनी, तू रिश्ते की बात कर रहा है। द्रोणाचार्य जी गुरु हैं, रिश्ते की बात कर रहा है। कृपाचार्य शिक्षक गुरु हैं, उनकी बात कर रहा है। भीष्म पितामह पितामह हैं, पूज्य, उनकी बात कर रहा है। लेकिन ये जानते हैं कि दुर्योधन गलत है, हिंसा नहीं दे रहा है। कृत कारित स्वयं जो गलत काम करे और गलत की मदद करे, ये दोनों अपराधी हैं। इसलिए अब रिश्ते की बात न कर, अब धर्म की बात कर। रिश्ते से अपनाने से धर्म कमजोर हो जाएगा, और धर्म कमजोर होगा तो बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है, किसी तरह से कमजोरी में आकर जो अपने धर्म का पालन नहीं करता, इसका मतलब वो अधर्म के साथ है और वो भोगना पड़ेगा। बड़ी सूक्ष्म परिभाषा है। मैं यहाँ हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ, हमारी शिष्याएं बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं। कोई व्यक्ति शराब पीकर आया, ठीक है, चुपचाप बैठ गया, कोई बात नहीं, लेकिन सभा बिगाड़ने की कोशिश किया। हमारी किसी शिष्या को अपशब्द, हल्के शब्द बोलना शुरू किया, तो शिष्या की रक्षा में अगर मैं पुलिस को दे दूं, थप्पड़ मारकर उसके दांत तोड़ दूं, तो मैं धर्म कर रहा हूं। मैं कर सकता था, पुलिस को दे सकता था, थप्पड़ मार करके चुप करा सकता, नहीं किया, तो मैं भी उसका, मैं भी चोर हूं, मैं भी बदमाश हूं, मैं भी अधर्म के रास्ते हूं। ये हमारी वेद की परिभाषा है। हम गुरुओं के लिए भी कहा गया, शिष्यों की रक्षा करना, सही रास्ते पे लाना, समय पर उनको भोजन देने की शक्ति है, तभी तुम गुरु बनो। इसी तरह आगे भी कहा गया हमारे धर्म में, एक लड़की को अच्छी तरह आवश्यकता की पूर्ति कर सके, तभी आप एक के पति बने। जितने बच्चों को लायक बना सके, उतने बच्चों के आप पिता बने। बाकी बच्चे तो कूतरा और कूतरी भी पैदा कर देते। समाज की जो रक्षा कर सके, उस समय राजाओं की बात थी, समाज की जो रक्षा कर सके, न्याय दे सके, समाज के काम आ सके, उसी को राजा, अर्थात आज के हिसाब से मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर या बनना। बाकी सुख के भोग के लिए तो कोई बन सकता है। राम के साथ जो कहानी जोड़ी गई वो यही है। अच्छी पत्नी है, प्रिय है, लेकिन प्रजा का ध्यान ज्यादा था, पत्नी का कम था, इसलिए वो राजा राम कहलाए, रामराज कहलाए। अपनी प्रिय वस्तु का मोह न होकर, प्रिय वस्तु के मोह का त्याग करके जो प्रजा का भला करे, वही राजा बनने के लायक है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी आप पढ़िए, जब इंद्र की बात आई, सूर्य की बात आई, तो जा समझिए, सूर्य कहता है कर्ण, तू मेरा धर्म पुत्र है, और पिता अपने पुत्र को सावधान करे, बचाने की कोशिश करे। सुबह इंद्र ब्राह्मण का भेष धरकर आएगा, तू दानवीर है, सुबह सुबह जब भी प्रार्थना करने के बाद कोई भिक्षुक या ब्राह्मण आता है, तू ना नहीं बोलता, लेकिन तुम्हारी सरलता का इंद्र लाभ उठाना चाहेगा, क्योंकि वो अर्जुन का धर्म पिता है। बेटे, मैं यहाँ इंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं पिता की बात कर रहा हूँ। अगर मैं अपने पुत्र को बचाना चाहता हूँ तो सूत पुत्र नहीं, सूर्य पुत्र है। कर्ण तो मेरा पुत्र है। कहा मेरी माँ कौन है? कहा तुम्हारी माँ की प्रतिष्ठा कायम रखना मेरा धर्म है। एक ऐसी परिस्थिति थी, सब कुछ बताया आपको, बस इतना बता दो। सूर्य ने कहा कि तू मेरा पुत्र है, मेरी माँ कौन है नहीं बताऊंगा। क्यों पिताजी? क्योंकि ऐसी परिस्थिति है कि प्रकट करके तेरे मन में तेरी माँ के लिए घृणा ना पैदा हो, लेकिन तू मेरा पुत्र है। बस परिस्थिति ऐसी थी कि मैं नाम नहीं बता सकता। बाकी तेरी माँ है, बहुत बलवान है, तेरे में इतनी शक्ति माँ के कारण आई है और मैं तेरा पिता हूँ। तो जैसे मैं तुझे बचाने के लिए आया सावधान, ऐसे इंद्र भी छल कपट करेगा, लेकिन अपने बेटे पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए और अपने पुत्र को, परिवार को, समाज देश को बचाने में अगर कोई छल कपट करता तो वो भी धर्म है, इसलिए इंद्र अधर्म नहीं करेगा। अपने पुत्र को बचाना है, अपने देश को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। बड़ी सुंदर व्याख्या। मैं कई बार सरकारी आमंत्रण पर जेल में भी लेक्चर देने गया। लेक्चर के बाद जो भी मुझे अपराधी मिले, मैंने पहला प्रश्न किया, क्या आपने बेटे को अपराधी बनाओगे? डाकू? कोई नहीं बोल। तिहाड़ जेल में भी गया हूँ, भरूच में भी गया हूँ, रायपुर में गया हूँ, आगरा गया, कई जगह गया उन कैदियों के सामने कुछ विचार देने के लिए। भरूच भी 3-4 बार गया, बाकी और तो बाहर गया ही हूँ। लेकिन उन जो खूंखार अपराधी हैं, उनसे भी जब प्रश्न किया, क्या आप अपने पुत्र को अपराधी बनाओगे? स्वामी जी, समय संजोग ने मुझे डाकू, अपराधी, कुख्यात डकैत बनाया, लेकिन स्वामी जी, मेरे अंदर का जो बाप है वो नहीं मरा है। अंदर का बाप अपने बच्चों को कुख्यात डाकू होने पर भी गलत रास्ता नहीं बताएगा। मेरा धर्म है कि मेरा लड़का गलत ना जाए। और कई जगह, ये रायपुर की बात बताऊं, वहां जब जेल में लेक्चर देने गया तो 2-3 किस्से ऐसे हैं, उधर डाकू वगैरह बहुत होते हैं, उनके साथ रिश्तेदारों ने न्याय नहीं किया, इसलिए डाकू बन गए। अगर न्याय मिलता तो डाकू नहीं बनते। अब वो सब बात मैं उठाना नहीं चाहता, कहीं जमीन की बात थी, कहीं घर की बात थी, कहीं हमारी बेटी का अपहरण किया गया, किसी ने ठीक नहीं किया, कई बातें। लेकिन फिर भी वो गलत काम किए, लेकिन अपने बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाने की किसी तरह कोशिश नहीं की है, क्योंकि अंदर का बाप जिंदा है। इसलिए एक बड़ी सुंदर बात आई है, पुत्रों को कभी नहीं कहना चाहिए, एक इशारा करता हूं, अगर मेरे पिता ने, आपके पिता ने, किसी के पिता ने कुछ गलत किया तो आपके लिए किया। इसलिए सारी दुनिया कुछ बोले, लेकिन पुत्र नहीं बोल सकता, क्योंकि हमने झूठ बोला, कुछ किया, आपसे तो नहीं कहा कि झूठ बोलो, आपसे तो नहीं कहा कि डकैती डालो। इसलिए वहां पर जो सूर्य ने कहा, एक पिता का धर्म बताया, मैं अपने पुत्र को बचाना चाहता हूँ, सावधान कर रहा हूँ, इंद्र आएगा, वो पाप नहीं है, अपने पुत्र को बचाने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करेगा। तो यहाँ पर क्या मैं बताना चाहता हूँ, हम अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को, अपने समाज को, अपने देश को जो बचाते हैं, वो बचाना ही धर्म है। हमें दूसरों की नकल नहीं करना। आज आप मिलिट्री में है, आपका लड़का मिलिट्री में है, वीर गति प्राप्त किया, शहीद हुआ, वो बचाने में है। लेकिन जब चोरी करने गया पुलिस के गोली से मरा तो शहीद नहीं होता। मेरा ख्याल है हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में महीने में दो चार जेल में तो फांसी हो रही है, लेकिन जब भगत सिंह की फांसी हुई तो देशभक्त कहलाए, और आज जो फांसी आ रही देशभक्त नहीं है। अच्छा काम करते समय पुलिस के गोली से जो मारे गए वो शहीद हुए, और चोरी और डकैती करते समय जो मारे गए उन्हें शहीद नहीं कहा गया। इसलिए हमारे यहाँ हर चीज का उत्तर है। इसलिए सूर्य कहता है पुत्र को बचाना धर्म है, मैं तुझे सावधान करने आया, वो तेरा कुंडल और कवच मांगेगा। परिस्थिति ऐसी थी कि मैं विवश होकर तेरा धर्म पिता होते हुए, लेकिन कुंडल और कवच के रूप में तेरी रक्षा में रहा। ये कुंडल और कवच जो है बेटे, ये तुम्हारी रक्षा के लिए और व्यवस्था मेरी तरफ से है, तो मैं तेरे साथ नहीं रहा। कुछ ऐसी परिस्थिति रही, लेकिन ये कुंडल और कवच पिता के रूप में ही तेरी हमेशा रक्षा करते रहे और करेंगे। आएगा इंद्र, वो अपने पुत्र को बचाएगा, मैं अपने पुत्र को चाहता हूँ, वो भी चाहता है, लेकिन मैं तुझे सावधान करता हूँ। तू सोना चांदी हीरा मोती दे देना ब्राह्मण को, लेकिन कवच और कुंडल नहीं। कहते पिताजी आप अपना धर्म बताइए। बड़ी सुंदर बात। कहा बेटा क्यों पूछ रहा है? आप जब सुबह प्रकट होते हैं तो जो आपकी पूजा करता है उसके यहाँ प्रकाश देते हैं, और जो नहीं करता उसके यहाँ नहीं देते। कहा नहीं बेटा, मेरा स्वभाव है, मैं अंधेरे को खा जाता हूँ, पूरे विश्व को एक जैसा प्रकाश देता हूँ, मैं नहीं देखता कौन अच्छा है कौन बुरा है। ये क्या है आपका पिताजी धर्म? पिताजी आप भी कहते हैं कर्ण तो मेरा धर्म पुत्र है, तो पिता का गुण तो पुत्र में आएगा। तो जब आप अच्छा बुरा नहीं देखते, अपने धर्म का पालन करते हैं, तो आप सुबह सुबह जब भी कोई कुछ मांगने आता है तो आपका गुण मेरे में है पिताजी, मैं भी कुछ अच्छा बुरा नहीं देखता, जो मांगता है वो देता हूँ। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि अगर कवच कुंडल मांगेगा तो आपका स्वभाव मेरे में है, इसलिए मैं दूंगा। कहा बेटा पिता को सावधान करना, कर दिया, आगे तेरी जिम्मेदारी। कई बार बच्चे भी आते मेरे पास, मैंने कहा आपका पिता क्या चाहता? तो पिता जो चाहता आप नहीं किए, वो जिम्मेदारी आपकी है। यही बात जो है सूर्य कहता, मैंने पिता का धर्म का पालन किया, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं पाप उनकी बात नहीं, मैंने अपने धर्म का पालन, इसलिए हर पिता अपने धर्म का पालन करे, आगे बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं। आए एक विचार है, आया इंद्र, मांगा दिया जो कुछ था। अब यहाँ देखिए पुत्र की, पुत्र में सब कुछ आ गया, आपका पुत्र भी है, आपका परिवार भी है, आपका समाज, आपका देश है, आपका काम है सावधान करो पुत्र को भी समाज को भी, उसे बचाने की कोशिश करो। आप बताओ कि कौन सा देश आपके साथ छल कपट कर रहा है, कौन क्या है, ये सब आपका धर्म है। फिर भी अगर कोई नहीं मानता तो जिम्मेदारी आपकी नहीं, आप तो अपनी जिम्मेदारी निभाए। इसलिए आज रशियन वैज्ञानिक भी जब हमारे ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, कहते हैं इसमें बड़ी ऊंची बात है, आपका रोल क्या है, अपने रोल को ईमानदारी से करो। इसलिए सत्य और प्रेम किसी समाज का, किसी जाति का, किसी का नहीं है, ये धर्म है जो जन्म से लेकर आ। अब ये जो संप्रदाय आई, इसका संबंध व्यवहार है, एक जगह प्लस है तो एक जगह माइनस है, एक जगह ऐसा है। अब देख लीजिए, आप जन्म से सत्य बोलते हैं, कोई भी। अब आ जाइए मनोविज्ञान, सूर्य का गुण कर्ण में है, पिता का गुण मेरे में है, शेर का गुण शेर के बच्चे में है, बकरी गुण बकरी के बच्चे में है। क्यों है? क्योंकि ये पिता 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 सा है। अब जहाँ इस पर विचार कीजिए, वेद उठा दे, आप जन्म से सत्य क्यों बोलते हैं? सिखाया नहीं जाता, सिखा झूठ। आप जन्म से सत्य क्यों बोलते हैं? वेद उठा, सत्यम ब्रुयात प्रेम ब्रुयात न ब्रुयात सत्यम अप्रेम। हर व्यक्ति सत्य बोलता है, हर व्यक्ति के अंदर प्रेम है। ये जानवर भी देखिए कितना प्रेम करते हैं, प्रेम हम भी करते हैं, लेकिन जानवर प्रेम का विस्तार नहीं कर पाता। हम आप विस्तार कर सकते हैं, इसलिए वो प्रेम ईश्वरी हो जाता है। जानवर 3-4 महीने तक बच्चों को बहुत प्यार करेगा, मैंने देखा है। गाय का बच्चा गाय के सामने 3 महीने तक रहे तो कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता, उसकी घास उठा के दूसरे को नहीं दे सकता। लेकिन 6 महीने के बाद गाय के पास से ही बच्चे को पकड़िए नहीं बोलती, और उसका चारा उठा के ले जाइए तो छीन लेती गाय। लेकिन 3 महीने के अंदर मजा ले कि उसके बच्चे के चारा आप जो है छीन ले, खूंखार हो जाती, भूल जाती। इसलिए वेदों ने कहा कि जिससे हम पैदा हुए, अगर कुछ दिनों के बाद उसके प्रेम को भूल गए तो हम जानवर बन गए, पता नहीं फिर कहाँ गए। लेकिन हम आप सारी जिंदगी और माता पिता के प्रेम को याद रखेंगे तो एक अच्छे इंसान है। राम ने याद किया तो भगवान बने, रावण नहीं याद किया तो राक्षस बना, किसने याद रखे तो भगवान कृष्ण हुए। कंस नहीं याद, कभी देखा माँ बाप चाचर लेते एक विचार। अब सत्य की बात जो वेद करता, जो जहां से आया है उसका गुण लेकर आया। इस शरीर आपका पंचमहाभूत से बना है, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। अब विज्ञान पे आ जाइए, ये अंतरिक्ष क्या है? इसी पांचों को मिला के अंतरिक्ष माना, और इसी पांचों को मिला के हमने परमात्मा कहा। इसलिए कहा जाता है हर हस्त मतलब हर हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ परमात्मा। अब देखिए पांच उंगलियां, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इसको मिला के अंतरिक्ष। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पांच को मिला के अंतरिक्ष बोला और कहा अंतरिक्ष में से तुम प्रकट हुए हो। अरे पांचों को मिला के हमने परमात्मा कहा कि अपना हाथ जगन्नाथ। अब देख लीजिए कैसे, पहले विज्ञान लीजिए। पानी के हैं पांच गुण, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। अब विज्ञान पे आ जाइए। अग्नि के 4 गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप और रस। अब विज्ञान के आधार पे आइए, ये पांचवा गुण जो गंध का पृथ्वी में आया कहां से आया? ये पानी में अप्रगट था, प्रगट हुआ पृथ्वी में। अग्नि के 3 गुण, शब्द स्पर्श रूप, ये रूप अप्रगट था वायु में, अप्रगट हुआ अग्नि में। वायु के 2 गुण, शब्द और स्पर्श, ये स्पर्श अप्रगट था आकाश में, प्रगट हुआ वायु में। एक बात फिर समझ लें, आकाश का गुण है शब्द, ये पूरा विज्ञान पूरा वेद एक दूसरे के साथ है, यहाँ खंडन नहीं है। आकाश का गुण है शब्द, वायु का है शब्द और स्पर्श, अग्नि का है शब्द स्पर्श और रूप, जल का है शब्द स्पर्श रूप और रस, पृथ्वी का है शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। अप्रगट का प्रगट होना, अब देख लीजिए, आकाश का गुण है शब्द, ये आपका जो कान है ये आकाश का प्रतीक है। ये जो ब्रह्मांड की बात की जाती है, मिट्टी खाने पर भगवान किसने अपने मुख में अपनी माँ जसोदा जो ब्रह्मांड दिखाया, आज विज्ञान मान रहा है। ये जो आकाश का गुण शब्द है, शब्द कहाँ सुनते हैं, ये आकाश का गुण है। स्पर्श क्या है, वाज, ये आपका जो चेहरा है, शब्द और स्पर्श। आग क्या है, तीन गुण, शब्द स्पर्श और रूप, रूप देख रहे हैं। फिर आइए जीवा पर, शब्द स्पर्श रूप और रस, और गंध है पृथ्वी का गुण, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इसलिए पूरा ब्रह्मांड है। अब ये ब्रह्मांड जो है, अब जब व्यवहार से ले चले, ये सत है, आकाश भी सत है, किसी के जो किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है। कोई कहे आकाश किसने बनाया, वायु किसने बनाया, अग्नि किसने बनाया, जल किसने बनाया, पृथ्वी किसने बनाया, हम लोगों ने अपनी कल्पना से देवताओं का नाम लिया, जो हमें सुख दे और बदले में कुछ नहीं मांगे, वही हमने परिभाषा देवताओं की की। माता पिता को देव क्यों माना जाता है, हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, कुछ नहीं मांगते। इसलिए उसी देवत्व को फिर भगवान का रूप दिया गया। आकाश आपसे क्या मांगता है, देता है। वायु आपसे क्या मांगती है, अग्नि आपसे क्या मांगती है, जल आपसे क्या मांगता है, पृथ्वी क्या मांगती है, लेकिन जो दोगे वो स्वीकार करेंगे और आपकी कल्पना से विचार से चलने के लिए तैयार है। पानी की कोई कल्पना नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं, लेकिन पानी को आप रसोड़े में ले जाओ, बाथरूम में ले जाओ, खेत में ले जाओ, चलने के लिए तैयार है। जिसका अपना जो है, अपना कोई संकल्प नहीं है, लेकिन आपके संकल्प साथ चलने के लिए तैयार है, उसी को देवत्व माना गया, अस्तित्व माना गया और भगवान माना गया। सूरज है इस समय, हम सूर्य भगवान बोलते हैं, सूरज है, लेकिन आपकी मदद करेगा। आप कुरान पढ़िए, आप बाइबल पढ़िए, धर्मग्रंथ पढ़िए, धर्मपद पढ़िए, अंग्रेजी पढ़िए, वो ये नहीं कहता सूरज कि वेद पढ़ोगे तभी प्रकाश दूंगा, कुरान पढ़ोगे तो नहीं दूंगा। वो कहता है कि मैं हूँ, मेरा उपयोग जिस विचार से करना चाहो करोगे, और नहीं करना चाहो तुम जानो, लेकिन तुम्हारे विचार के साथ मैं चलने के लिए तैयार हूँ। ये सूरज कहता है मैं चलने के लिए तैयार हूँ, इसलिए भगवान। कई बार लोग मुझसे कहते हैं स्वामी जी मैं मंदिर जाता हूँ मेरा काम नहीं हुआ। मैंने कहा किस भगवान ने कहा, तो तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हारा काम करूँगा। कहा नहीं, तो किसी नहीं कहा था, आप अपने लिए गए। अभी आप आंख बंद कीजिए, सूरज थोड़े कहेगा कि मैं निकला हूँ, आंख बंद ना करो। काम लेना है तो सूरज मदद के लिए तैयार है, लेकिन आंख बंद कर लो तो आपकी बात है, सूरज की बात। इसलिए बोला निरीहम। और जिसको वैज्ञानिकों ने सापेक्षवाद कहा, हमारे संस्कृत शब्द को सापेक्षवाद, मतलब कि सूरज में दुख सुख नहीं है, जैसा आपको उपयोग करना है कर सकते हैं। और सापेक्ष जो वाद है, जो निरपेक्ष है, स्वतंत्र है, अस्तित्व है, निरीह है। कैसे सापेक्षवाद, या समझिए इसमें सूरज है, आप जब आएंगे तो कमरे में जो व्यवस्था की गई है वो पंखे आ जाए थी, तो जब आपको गर्मी लगी तो आपने पंखे का उपयोग किया, लेकिन ठंडी में भी सूरज निकलेगा, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि ठंडी है 10, 11, 12 तक ठंडी है, जिसमें आप गर्म कपड़े पहने ये कर रहे हैं। तो देख लीजिए ये पंखा भी सापेक्ष है, गर्मी में आपको सुख दे रहा, और ठंडी में चलाते हैं दुख दे रहा है। अगर ये पंखे में सुख होता तो 12 महीने सुख देता, पंखे में दुख होता तो 12 महीने दुख देता। सापेक्षवाद ये आपकी अनुकूलता प्रतिकूलता पर है, इसलिए सापेक्षवाद का संबंध रिहम का संबंध आपसे है, पंखे से नहीं। इसका उपयोग कैसे करना वो आपके ऊपर है, इसका दुरुपयोग कैसे करना आपके ऊपर है। तो वेदों में निरीह शब्द है कि जो है उसका उपयोग आपके विचार करें। इसलिए कि मैं मंदिर जाता हूं, मंदिर किसने कहा जाने के? आपको कहा गया कि मंदिर जाओगे, शक्ति मिले, सफलता आप अपने लिए गए, कहां भगवान ने कहा? लेकिन हम कह देते मेरा काम नहीं हुआ तो मंदिर छोड़ो ना, भगवान ने जब कहा नहीं छोड़ने की क्या पूछने की जरूरत। किस नदी ने कहा मेरे में स्नान कर? इसलिए वेद का एक शब्द याद रखना, जो अस्तित्व है उससे मदद हमें लेनी। अब हम हैं, मैं हाथ नहीं बना सकता लेकिन प्रणाम भी कर सकता हूँ, थप्पड़ भी मार सकता हूँ। मैं कहूँ हे भगवान ये पुण्य आपको मिलेगा, भगवान कहता है मैं पुण्य पाप से दूर, अगर पुण्य लेना है तो प्रणाम कर और पाप लेना है तो थप्पड़ मार, लेकिन तेरे प्रणाम करने से पुण्य मुझे नहीं मिलेगा और तेरे थप्पड़ मारने से पाप मुझे रहे, क्योंकि मैं निरपेक्ष हूँ और ये सब तेरा सापेक्षवाद है। पानी वही है, प्रेम से स्नान कीजिए और गलत ढंग से तैरिए तो कोई मर भी सकता है, कोई जिंदा भी, वो मेरी है, उपयोग आप पर। आपके घर पे आता अच्छे अच्छे भोजन बनाते, ये सापेक्षवाद है। नियम से खाऊंगा ताकत मिलेगी, लालच में ज्यादा खा गया तो पाप आपको नहीं, और मैं कहूं कि डॉक्टर की फीस दो तूने ज्यादा खिला दिया ये नहीं आता। इसलिए पूरा जगत जो है हमारा जो संस्कृत का शब्द है ये सब अपनी जगह ठीक है, आकाश भी वायु भी अग्नि भी जल पृथ्वी, लेकिन एक थोड़ी सी बात होगा, आज विज्ञान मान गया कि दो के मेल से तीसरी से जन्म लेती है और उसमें घर्षण पैदा होता है, बिना फ्रिक्शन के कोई क्रिएशन नहीं। एक बार वैज्ञानिकों ने मेरे से पूछा कि स्वामी जी हिंदू धर्म में आप विज्ञान से, मैं जानना चाहता हूं कि माता पिता को भगवान क्यों मानते हो? ऑन द बेस ऑफ द साइंस जस्ट टेल मी। मैंने कहा यू आर द साइंस, मैंने कहा वैज्ञानिक है, कहा ये सामने आपके नर्मदा जी हैं, एक गिलास पानी लाओ, इस पानी को आप नर्मदा जी बोलेंगे, नर्मदा का अंश बोलेंगे। आप ये बताइए जो गुण नर्मदा में है विराट वो इस अंश में है पानी का है? अभी जो प्रश्न के एकम तत् विपरा बहुधा बदल, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आचार्य सर। अब देखिए आप 50 गिलास लाइए, कोई लाल है कोई पीला है कोई टेढ़ा है कोई ऐसा है कोई वैसा है, सब में नर्मदा के जल डालिए, गुण की दृष्टि से बराबर हैं लेकिन रंग से ऊंचाई से इससे सब अलग अलग दिखाई पड़ेगा। अरे हाँ स्वामी, तो नर्मदा का जल आप देखना चाहते हैं तो उसका रंग क्या देखना चाहते हैं? स्वामी बड़ी अच्छी बात बता, हम सब जब सो जाते हैं ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, आप हैं मनसानंद, आप हैं कलेक्टर, आप हैं डीडीओ, हैं लेकिन ऐसी अवस्था में नहीं, फिर भी आप हैं। जब आप मन बुद्धि से परे चले जाते हैं तो आप अपने अस्तित्व में आते हैं और अस्तित्व में सब समान हो जाते हैं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एक अनपढ़ जब सो गए अपने अस्तित्व में आए दोनों बराबर हो गए, जागने पर ये पढ़ा लिखा है अनपढ़ है बड़ा है छोटा, तो बिना साधना के भी आपकी एक ऐसी अवस्था है जहां सब बराबर हो जाते, मेरी बेटी आपके बेटी हमारे साथ ही सोए हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में कौन बाप कौन बेटी कौन गुरु कौन चेला हैं, लेकिन जगने पर रिश्ता होगा, बाकी ऐसी ढोल सब एक है। तो विज्ञान का था नींद जो है मिनिमम है, दैट इज द मिनिमम स्टेट ऑफ द माइंड, और परमोच्च अवस्था दैट इज द मैक्सिमम स्टेट ऑफ द माइंड, और फिर विज्ञान का था शून्य और विराट दोनों एक हो जाते गुण के दृष्टि से। तो नदी में से कितने जल ला के उनके कलर बदलो स्वरूप बदलो, लेकिन जल तो वही रहेगा। अब आपने कहा कि माता पिता को भगवान क्यों कहा जाए, मैंने कहा पानी के एनालिसिस करो तो वैज्ञानिक दृष्टि से क्या है, साधारण दो भाग हाइड्रोजन एक भाग ऑक्सीजन का, हाँ वैज्ञानिक दृष्टि से यह H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो पानी बनता है, तो दो चीज में जब फ्रिक्शन पैदा हुआ तो पानी बना, फिर आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं बोलते, हाँ स्वामी जी क्या बोलते हो, एनालिसिस करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में घर्षण पैदा होकर के जो पानी प्रकट हुआ उसको आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं बोलते उसे पानी बोलते। अब आपने कहा जब मैं अलग अलग देखता हूं पिता भी दिखाई पड़ते हैं माँ भी दिखाई पड़ती, मैं पिता को भी देखता हूँ माँ को भी देखता हूँ, लेकिन माता पिता के घर्षण से जब मैं पैदा हुआ इसलिए वो परमात्मा है। तो जैसे आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं बोलते ऐसे माता पिता को हम लोग न माँ बोलते न पिता परमात्मा बोलते हैं, उसे जोड़ पाते। देख लीजिए वेद की स्थिति, आपकी बात करूँ अपनी बात करूँ, ये विज्ञान वाली बात कि कहाँ तक हम पहुँचे शिव और शक्ति, आपके पिता उनके पिता उनके पिता उनके पिता उनके पिता उनके पिता उनके पिता, ये जो शिव का नारेश्वर रूप है ये पूरा वैज्ञानिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जबरदस्त शक्तियां, शंकर का आदनारेश्वर अपने पिता को पिता 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 वो जाएंगे शंकर में अर्ध में, और माँ को लो माँ उनकी माँ उनकी माँ उनकी माँ ये जाएगी अर्ध नारेश्वर में जिसे आप कहते शिव और शक्ति माता और पिता, और जो जहां से आया गुण लेकर आया ये आपका विज्ञान कहता है। जब आप नदी में से जल लाए तो नदी का गुण लेकर आए, आप छोटे हैं कि बड़े, इसलिए हमारी आपकी जन्म की जो स्थिति है माध्यम पिता है, लेकिन मूल उनका पिता कौन उनका पिता कौन शिव, मेरी माँ कौन उसकी माँ उसकी माँ उसकी माँ उसकी माँ शक्ति जिसे पार्वती हुआ। तो शिव शक्ति और विज्ञान के आधार पर कहा यहाँ जितने भी पुरुष वय थे वो सब शिव के स्वरूप, आपकी पत्नी आपके साथ बैठी है वो शक्ति वो उमा है पार्वती, उन्हें शिव शक्ति के मेल से आपके गोद में आपका बच्चा बैठा हुआ, इसलिए शिव शक्ति का गुण आप में आएगा जो जहां से आया। तो सत्य क्या परमात्मा, ये स्वरूप परमात्मा के दो रूप शिव और शक्ति, और उसी में से क्रम निकलते रहे, और फिर एकम सद विपरा पौधा बदन, हमारी बेटी हमसे कहती है कि पिताजी हमसे पिता से कहती है कर, तो सोने का हम अपनी बेटी के लिए कई अलंकार बनवाए है सब सोना, लेकिन किसी अलंकार ना बंगड़ी होगा किसी का बेटी होगा किसी के ये होगा, लेकिन है तो सब सोना का सोना आकार से, इसलिए हम आप आकार में मनीषा नंद आकार में कलेक्टर हैं वीडियो, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो पुरुष शिव का स्वरूप, बेटियां बैठी हैं आप शिक्षिका, आज की हमारी बेटियां भी बड़ी अच्छे अच्छे पोस्ट पर जा रही हैं, अभी राष्ट्रपति है तो देखिए तो आप राष्ट्रपति हैं कि कलेक्टर हैं, लेकिन मूल रूप से आप शक्तिशाली स्वरूप हैं, गुण वही है। इसलिए एकम सत विप्रा बहुधा बदल, जब आप शून्य में जाओगे तो वहां जो अनुभूति है एक आनंद, एक अस्तित्व है, और प्रकट होने पर मैं, मेरे पिता, मेरे बच्चे, मेरा परिवार मेरे साथ सो रहा है, साउंड स्लीप में सब एक हो गए, न कोई पुत्र, न कोई पिता, न कोई भाई, फिर भी जगने पर रिश्ता हम बनाते हैं, फिर रिलेशन बना कर, ये विज्ञान भी कहता है। और ये अनुभूति सबको हो जाए शून्य या विराट के सब में मेरे परमात्मा है, मैं ही, हमारी जो प्रार्थना सर्वे भवन सुखना सर्व उत्ता, भारत की प्रार्थना में सबके सुख की प्रार्थना की गई, अपनी क्यों नहीं। विज्ञान का था बड़ी सुंदर बात है, जब मैंने कहा हे परमात्मा सबको सुखी रखो, तो विज्ञान भी कहता कि आपके पास मोबाइल है, आप अमेरिका में हैं कि कलकत्ते, मैं भी बड़ौदा में, जब मैं मोबाइल से एक नंबर पर आपसे बात करता हूं तो टावर अंतरिक्ष में जाता है, अंतरिक्ष के टावर पे आता है, फिर आपका नंबर पकड़ता है और 10,000 किलोमीटर से एक दूसरे से बात कर, एक व्यवस्था है, उसमें कितने मोबाइल चल रहे हैं, कितने अंतरिक्ष में बातें चल रही हैं, लेकिन वो विषय। इसी तरह से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना पहले अंतरिक्ष में जाती है, जैसे मोबाइल गार्सल से किया अमेरिका तक गया, पहले अंतरिक्ष में, फिर अमेरिका, फिर वो बात किया अंतरिक्ष में मेरे पास। इसी तरह से जब हम प्रार्थना, हे प्रभु, हाथ ऊंचा कर, हे प्रभु सबको सुखी रखो, तो विज्ञान मान गया ये अंतरिक्ष में जाएगा, जिसका ध्यान लगाए उसको भी सुख मिलेगा, और याद रखिएगा उसमें ये नहीं कहना है कि हे परमात्मा मुझे सुखी रखो, क्योंकि विज्ञान कहता है जो सबके लिए सुख की प्रार्थना करेगी, आप करेंगे या करेगी, जो भी करेगी या करेगा, वो प्रार्थना की शुरुआत आपसे ही होगी, अर्थात हे भगवान सबको सुखी रखो, तो सबको सुख के साथ उसकी शुरुआत भी अपने से होगी, इसे अपने लिए अलग से प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। पांच विज्ञान भी हमारे साथ हो गए, ये बड़ी ऊंची बात है, इसलिए कहा जाता है सुबह सबके लिए प्रार्थना करो, उसमें तुम भी आ जाओ, सबके कल्याण की भावना करो, तुम भी आ जाओगे। हम आप हिंदू हैं, हमें हिंदू मर्यादा का पालन करना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने समाज की रक्षा करनी है, अपने धर्म का पालन करना पड़ेगा, दूसरों की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, लेकिन जैसे थोड़ा बहुत उड़ान दिया पिता का, भगवान कृष्ण का, कि समाज बचाना मेरा धर्म है, अर्जुन कर्ण गलत व्यक्तियों के साथ है, मैं उसको नहीं बचा सकता, तो आप सबसे यही कहूँगा, आज डॉक्टर सैनी, डॉक्टर पटेल और निवेदन कहा एकम सत व्यपला, सत की अनुभूति के बाद भी कृष्ण को भी काम करना पड़ा, राम को भी काम करना पड़ा, अच्छों की रक्षा करनी पड़ी। आइए हम आप सत्य को पहचाने, सत्य के साथ रहें, अपने को, अपने पुत्रों को, अपने परिवार को, अपने देश की रक्षा कैसे की जाए, इनको बचाना ही धर्म है। अब आप कहेंगे स्वामी जी कृष्ण जानते थे, यही इशारा कर रहा, मैं सत्य के पक्ष में हूँ, मैं स्वयं सत्य हूँ, मैं उसी का स्वरूप हूँ, लेकिन सत्य का स्वरूप, पूर्ण स्वरूप भगवान कृष्ण हमारे, और किसने देखा, नाचते भी है, कूदते भी है, प्रेम भी बहुत किया, जहाँ जरूरत पड़ी जैसा किया। तो मैं आपसे यही कहूँगा, विराट कोई रूढ़ी नहीं है, भगवान के विराट के स्वरूप है, विराट स्वरूप दिखाया, उसमें कोई रूढ़ी नहीं है, जहाँ रूढ़ी है वहाँ परेशानी है। आप सब पढ़े लिखे हैं, आपका विकास हो, आपके बच्चों का हो, आपके परिवार का हो, आपके समाज और देश का हो, इसे ध्यान में रख करके आप सत्य होते हुए जो नियम बनाएंगे कालांतर वही होगा। हम लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म में एक ही चीज है, विचार शक्ति। क्या विचार, मैं कैसे बलवान बनूं? और बलवान बन करके जो दुखी हैं, जिनको लोग सताते हैं, जिनको न्याय नहीं मिलता उनको हम न्याय दें, जो भूखे हैं उनको हम खिला सकें, जो सोए हैं उनको जगाएं, जो चल रहे हैं उनको दौड़ाएं और मंजिल तक पहुंचाएं। और हिंदू धर्म के एक और बहुत हिंसनात्मना दोहनाते हिंदू है। हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, लेकिन कोई हमारा बुरा चाहेगा तो हम चाहने भी नहीं देंगे। हम किसी को दबाएंगे नहीं, लेकिन कोई दबाएगा तो किसी से दबेंगे नहीं, क्योंकि हम सनातन सत्य है। सत्य कभी किसी से दबता नहीं। सत्य अगर दब गया तो मिथ्या का आचार हो जाएगा और आतताई पैदा होकर के सत्यानाश करेंगे। यह है एकम सत्य विपुला पौधा। सब में सत्य को देखो, आप स्वयं सत्य हो, लेकिन फिर भी इस समाज में गेहूं के साथ जैसे घास उगती है, भोजन के साथ मलमूत्र होता है। भोजन हमारा है, नहीं उसमें मलमूत्र है, उसको निकालना पड़ता है। ये देश मेरा है, घर मेरा है, आप मेरे हैं, लेकिन घर में, परिवार में, देश में अगर कोई मलमूत्र की तरह है अपना, उसे निकालना जरूरी है, तो उसके निकालना ही धर्म है। खून को मत निकालो, हमारे भोजन में से खून बनता है, अगर खून को निकालेंगे तो निर्बल हो जाएंगे। निर्बलता सनातन धर्म नहीं है, सबलता। अर्जुन जब निर्बल बना तो भगवान उसे सबल बनाया। तो एकम सत्य विपुला पौधा बदन, ये वेद मंत्र है। ये कहता है सत्य तुम्हें बलवान बनाता है। सत्य बलवान बनाकर दूसरों की रक्षा के लिए, आगे बढ़ाने के लिए है, तो स्वयं सत्य में रहते हुए किसी क्षण कमजोर न बनो। आओ अपनी रक्षा, परिवार की रक्षा, समाज और देश की रक्षा करो। फिर भी कहीं समझने में कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछना कि सत्य क्या है, उसका पालन क्या है, मैं आपके साथ हूँ। हरि ओम।
सद्गुरु देव की
बारह भैया।